اب چند چیزیں سمجھیں گے اس موضوع میں سے. پہلی چیز, اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ نو ایگزامپل. اللہ تعالیٰ کی تو کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا. کون اس جیسا رہا یا کس نے وہ سب کچھ کر دیا انسانوں کے لیے جو کہ اللہ نے کیا؟ اور اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ہر لحاظ سے واحد اور بے مثال ہیں. اس کی صفات اس قدر بے حد و حساب ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا, حتیٰ کہ ان کا تصور کرنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں. مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت علیم بھی ہے, جس کا مطلب ہے کہ ہر وقت ہر چیز کا علم رکھنے والا. کسی انسان نے اپنی پیدائش سے لے کر موت تک کتنے سانس لیے, اس کا دل کتنی مرتبہ دھڑکا, اس کی آنکھیں کتنی مرتبہ جھپکیں, اس کی زبان نے کتنی دیر حرکت کی, اس کے قدم کہاں کہاں پہنچے, اس کے دل میں کتنی خواہشات پیدا ہوئیں, اور خود اس کے ہاتھوں پیروں میں کتنی لکیریں ہیں, اس کے جسم پر کتنے بال ہیں. انسان اپنی زندگی میں کتنے جھوٹ بولتا ہے, کتنے سچ بولے, کتنی نمازیں پڑھی, کتنی چھوڑیں, کتنی دولت کمائی اور کیسے کمائی, کتنی خرچ کی اور کہاں خرچ کی, کتنے حقوق العباد ادا کیے اور کتنے ترک کیے, رات کی تاریکی میں کیا کیا اور دن کی روشنی میں کیا کیا, مرنے کے بعد وہ کہاں دفن ہوا, زمین نے اس کے کتنے ذرات ختم کیے, کتنے باقی رکھے, مرنے کے بعد اس کا عمال نامہ کہاں محفوظ ہوا, اور ایسی دیگر تمام تفصیلات اللہ کے ذاتی علم میں ہیں. یہ معاملہ کسی ایک انسان کا نہیں, بلکہ روز اول سے آخری دن تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کا معاملہ ہے. بات واضح. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سفارش جب کرواتے ہیں تو پھر ان کو بندوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر اسی طرح سے انسانوں کے بعد جنات اور فرشتوں کے بارے میں بھی ایسی تفصیلات کا قیاس کر لیجئے. اس کے علاوہ دیگر تمام بری, باہری اور فضائی مخلوق کا تصور کیجئے. جاندار مخلوق کے علاوہ غیر جاندار مخلوق, حجر, شجر, دریا, سمندر, چاند, ستارے وغیرہ میں سے کون سی مخلوق ایسی ہے جس کی تفصیلات اللہ کے ذاتی علم میں نہیں آئیں؟ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے, قدر نامحدود ہے, کہ اس کی تفصیلات احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ کی اسی ایک صفت سے باقی تمام صفات پر قیاس کیا جا سکتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, سورۃ کہف آیت نمبر 109, بالکل تکمیل والی آیتیں. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جینا بمثلہ مددا. اے نبی کہو. اب آپ سوچیے, کیا اللہ تعالیٰ خود نہیں فرما سکتے تھے؟ پھر نبی سے کیوں کہلوایا؟ جیسے دنیا میں بھی آپ کوئی کام خود کر لیتے ہیں, لیکن کسی میں کسی بڑے کو انوالو کر لیتے ہیں کہ چلے ایک تو عزت بھی ہوگی, اور دوسری بات ہے کہ بڑے کو کوئی انکار نہیں کرے گا. تو قرآن پاک کی ایسی آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جاتی ہے. کل لفظ سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے, وہ کیا؟ کل کہیے. اب کوئی کہہ رہے نا اللہ کے نبی کو. اگر اللہ کے نبی نے خود لکھا ہوتا تو کل تو میں کہتا ہوں. دیکھیں ایسے ہی ہے نا. کیا تھا ترجمہ؟ اے نبی کہو, اگر سمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں تو وہ سب ختم ہو جائیں گے, لیکن میرے رب کی تعریف و توصیف کے کلمات ختم نہ ہوں گے, بلکہ اتنی ہی روشنائی اور بھی لے آئیں تو کفایت نہ کرے گی. 109 سورۃ کہف ہے یہ. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء, صلحاء اور شہداء میں سے کون ایسا آیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی لا تعداد صفات میں سے کسی ایک صفت ہی میں اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ ذرے اور آفتاب کی نسبت سے ہی. اگر کوئی مقابلہ نہیں اور واقعی نہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کے نصران بالا کی مثالوں سے دین سمجھنا یا سمجھانا اللہ کی صفات اور قدرتوں کا انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فلا تدریبوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. سورۃ نحل کی آیت نمبر 74 ہے. لوگوں, اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ کھڑو, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو پہلی چیز پھر دہرا لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا کہ انسان اپنے لیے مشکل راستے کھڑے کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کی میری زندگی میں آتی ہیں, تو آپ خود دیکھیں دنیا میں آپ کسی کی مثال لے سکتے ہیں؟ مطلب وزیر اعظم, सदरे पाकिस्तान और फलां और फलां नहीं ले सकते आप? क्यों? वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, थोड़ा बहुत स्टेटस का फर्क है ना। असल बात जो फिर सारी बात में, हम अल्लाह को नहीं पहचानते। वमा कदरुल्लाह हक कदरी, लोगों ने अल्लाह की वो कदर ही नहीं की, वो कदर पहचानी नहीं जो उसकी कदर पहचानने का हक था। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये मिसाल वाली बात बहुत अहम है। देखिए आज हमारा पूरे मुल्क का निज़ाम सिर्फ इस एक मिसाल को ना समझने की वजह से बिगड़ा हुआ है। लोग कहते रोब से काम करवा लेंगे, धांधली से काम करा लेंगे, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं किसका बेटा हूँ, मैं किसका बाप हूँ, जी बड़े बाप का बड़ा बेटा। अब ये जितनी मैंने मिसालें दी है ना, ये सारी क्या हैं? ये सारी मिसालें इंसानों में इंसानों की बड़ाई की हैं। क्या आप इसको अल्लाह पे भी ले सकते हैं? नाउज़ुबिल्लाह, सोचने की बात है ना। इसलिए हमेशा मैं कहती हूँ सबसे प्यारा इल्म अपने रब की मार्फत का है। अभी मैंने यहाँ आने से पहले एक सीरीज थोड़ी सी मुख्तसर 2 दिन की करवाई जर्मनी में, अस्माउल हुस्ना, आई एम अमेज्ड बाय अल्लाह, आई एम अमेज्ड बाय रहमान, कि मैं अल्लाह से हैरान हूँ, अल्लाह की ज़ात उसकी सिफात इतनी है। तो मैं ये सोचती हूँ कि हम सब के दिल पहले अल्लाह की मोहब्बत से इतने भरे हों कि जब निचोड़ो ना अंदर से तो खून की जगह अल्लाह की मोहब्बत निकले। जैसे आप टॉवल है उसको पानी में डिप करके निकालेंगे तो उसमें से पानी निकलता है ना, चाहे गिर गई, टॉवल रखा, अब सोक करेंगे उसको, बाद में जाके निचोड़ेंगे तो चाय निकलेगी ना। अल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कहेंगे ये तो बातें आती हैं, ये मुश्किल है, अच्छा चले हम तो नहीं खा रहे, लेकिन आप इसको एक मिसाल देके फिर समझाती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के साथ देखें। हम कभी अपने पेरेंट्स के मामले में भी किसी की बात को नहीं पसंद करते, कोई कैसा भी हो, लेकिन हम कहते हैं कि भाई आप हमारे माँ बाप को कुछ नहीं कह सकते। आप अल्लाह की जितनी मार्फत लेते जाएंगे, लोगों ने अल्लाह के मामले में जो कुछ कहा किया होता है उससे आप अपने आप को बेनियाज करते जाएंगे, ठीक है। तब दूसरी चीज़ देखिएगा, अल्लाह ताला तमाम इख्तियारात का मुतलिक मालिक है। ये मुतलिक किसको कहते हैं? इससे मिलता हुआ कोई लफ्ज कभी हम बोलते हैं तल्ला, मतलब कहते हैं कम्प्लीट, पूरे का पूरा अल्लाह। अच्छा ये सबक तुम्हें दिन में कम से कम 17 बार पढ़ाया जाता है, इह्या का ना बोलो, आप लफ्ज इह्या को काट दें, आप इसको लिखिए ना बुदुक, बात तो समझ आ गई, हम आपकी इबादत करते हैं। ये लफ्ज़ इया क्या कह रहा है? सिर्फ, देखिए सिर्फ को ऐसे समझिए तेरी ही और तेरी भी, नहीं समझे? एक बीवी अपने शोहर से कहती है मैं आपकी ही बीवी हूँ, समझ आई ना, और अगर वो कह दे मैं आपकी भी बीवी हूँ, वो तो बात बहुत बिगड़ जाएगी ना। अब ये ही और भी का फर्क है, हम क्या सोचते हैं अल्लाह भी मैं भी, माशाल्लाह मैं भी, मैं कुछ कम हूँ किसी से? हम अपनी ज़ुबान में क्या कह रहे होते हैं कि अल्लाह तू भी बड़ा मैं भी बड़ी, हम दोनों मिल के बड़े हैं, हाँ वो दोनों बड़े बड़े बनते हैं, ये नहीं होगा। अल्लाह अकबर इन्नी असगर, अल्लाह सबसे बड़ा मैं सबसे छोटी। बहुत सारे लोगों को अल्लाह अकबर समझ आया हुआ है माशाल्लाह, तभी तो हज और उमरे करते हैं, तभी तो इतने पैसे खर्च करते हैं, सदके करते हैं। ये बड़े थोड़े लोगों को समझ आता है कि इन्नी असगर, कि मैं सबसे छोटी हूँ, बात समझ रहे? हम छोटे कैसे बने? हम तो अपनी ज़ात पे इतना लगाते हैं, हमारी तो सारी जंगें ही अपने बारे में होती हैं लोगों से। नमाज में क्या कहते हैं? व तआला जद्दू का, तेरी शान बुलंद, और अमली ज़िंदगी में मुझे ये कहा, मुझे ये समझा, मुझे लट डाउन किया, मेरी बेइज्जती की, मुझे पूछा नहीं, मुझे बड़ा नहीं बनाया। तो वो सिर्फ ज़ुबानी कलामी अल्लाह को कहते हैं असल में अपनी। तो इस जुमले पे गौर कीजिएगा, तमाम इख्तियारात का पूरे का पूरा मालिक अल्लाह है। देखिए मलकियत 2 किस्म की होती है, एक होती है आप एक चीज़ के मालिक हैं लेकिन आपका इख्तियार नहीं। मिसाल है कि देखिए ये सेल फोन है, कोई कहता है कि मैं इसकी मालिक हूँ, मान लेते हैं पैसे दिए मैंने, खरीदी, मेरे पास आ गई, लेकिन क्या मैं इसको टूटने से बचा सकती हूँ, गिरने से बचा सकती हूँ, इसको ख़राब होने से बचा सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो आप कह लीजिए फिर मैं मुतलिक मालिक नहीं हूँ। आप घर में हैं, आप किसी भी घर में रहते हैं और आप किराए पर रहते हैं, चाबी आपके पास है, आप जाते हैं खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन घर आपका नहीं है। आप उस घर में रह सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन क्या आप उस घर में चेंजेस कर सकते हैं? यहाँ तो आप खैर सब कुछ ही कर सकते हैं माशाल्लाह, लेकिन अमूमन हम दूसरे की चीज़ सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। गाड़ी रेंट पे ली, आपने गाड़ी ले ली, इस्तेमाल कीजिए, वापस कर दें। आप जाके गाड़ी का कलर तो नहीं चेंज करा सकते। ये फ़र्क है। अल्लाह सुबहाना ताला ना सिर्फ ये कि वो मालिक है, बल्कि वो इसको टूटने से भी बचा सकता है, इसके नुकसान से भी बचा सकता है, और उसको डिमोलिश कर दे, उसको चेंज कर दे। इस मलकियत को समझे, और मुझे वो नाम याद आ रहा है, अल्लाह अल मालिक, अल मलक, अल मलिक, मालिकुल मुल्क। चार पांच नाम है सिर्फ एक ही रूट से, मलक, मालिक, मालिकुल मुल्क। ये बड़ाई समझ आए ना, तो सच्ची बात है हम जमीन पे आ जाए। आज जिस भेड़ चाल में हमारा मुआशरा पड़ गया, सिर्फ हम लोगों को ये दिखाना चाहते हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं हूँ क्या। और सबसे ज्यादा हम कब दिखाते हैं? शादियाँ, पहनावे, ओढ़ने। यहाँ तो लगता है कि हमारी जिंदगी का मकसद एक ही है, हम इसीलिए जी रहे हैं। हर बंदा दूसरे से ऊपर, कोई हमसा हो तो सामने आए। हाँ, अब ये सारे तसव्वुर रखें और साथ अल्लाह को भी बड़ा कर लें, ये तो कोई तीन चार बड़े बन गए। नहीं, सारों को काटें, एक अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आइए इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। अल्लाह ताला कायनात में मौजूद हर चीज़ का खालिक और मालिक है। कायनात की हर चीज़ इसकी मखलूक और ममलूक है। मलाइका, अम्बिया, औलिया, सुलहा समेत सब इसके मुख्ताज हैं। अल्लाह ताला सब का हाजत रवा है, सब अल्लाह के महकूम हैं, अल्लाह सब का हाकिम है। अल्लाह ताला के सामने सारी मखलूक बेबस और आजिज़ है। यकीन करें, एक एक जुमले को अपने दिल पर लिखिए, इतने प्यारे जुमले हैं मालिक के बारे में। अल्लाह ताला किसी के आगे बेबस और आजिज़ नहीं। मखलूक को अल्लाह की पकड़ और सजा का खौफ है, अल्लाह ताला को किसी की पकड़ और सजा का खौफ नहीं। अल्लाह ताला मुख्तारे मुतलक है, इसके अलावा कोई मुख्तारे मुतलक नहीं। क़यामत के रोज़ शिफात की इजाज़त देने या ना देने का इख्तियार भी अल्लाह ताला के पास होगा। किसी को अज़ खुद शिफात की मजाल ना होगी। इसी तरह शिफात कबूल करने या ना करने का इख्तियार भी सिर्फ अल्लाह ताला के पास ही होगा। कोई अल्लाह ताला से ज़बरदस्ती अपनी शिफात मनवा नहीं सकेगा। अब ये जितनी बातें की गई अपने से नहीं की गई, इसके दलाइल देख लीजिए, लिखे हुए आपके सामने, बस आपने हाईलाइट ही करने हैं। पहली सूरह ज़ुमर आयत 44, कुल लिल्लाहि शफातु जमीया, कहो सिफारिश सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में। लगता है ना सोच के, जलाल सारी अल्लाह की है, तुम्हारी नहीं, किसी की नहीं। यानी वो ऐसे कहना चाहिए कि बंदे को अपनी औकात समझ आ जाती है कि तुम्हारा कोई बस नहीं है। फिर सूरत बकरा 255, इस आयत का दूसरा नाम क्या है? आयतुल कुर्सी। मंजल्लजी यशफाउ इंदहु इल्ला बि इज़्नी, कौन है जो इसकी जनाब में इसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके? है कोई जिसको हमारे कहते कोई है माइका लाल, कोई है जरा बड़ा, कोई बहुत बड़ा बनता है, आओ फिर। चैलेंजिंग स्टाइल है, हम आप किसी को इतना बड़ा चैलेंज नहीं दे सकते। हम कहते कोई आ ही ना जाए। हाँ, हम कहते हैं हमारे बगैर चिड़िया भी पर नहीं मारती, चिड़िया आती है हमारे हाथ पे बैठ के चली जाती। मंजल्लज़ी यशफ़ाउ इंदहु इल्ला बि इज़्नी। और आप देखिए, कम अज़ कम एक दफ़ा तो आप हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, दिन में 5 बार। आज से अभी अगली नमाज जो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, उसमें आप इस जुमले को पढ़ें कि मंजल्लज़ी यशफ़ाउ इंदहु इल्ला बि इज़्नी। फिलहाल ये पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इस एक जुमले से समझ आ जाएगा मन लाओ कौन है वो। अब ये मन में माँ भी है, ना जिंदा ना मुर्दा, ना पीर ना वली, ना दरख्त ना हजर ना शजर, कोई जानदार और बेजान चीज़ है ही नहीं जो सिफारिश करे उसके सामने। और आप सच जानिए, किसी मुल्क का, किसी जगह का, इदारे का डिसिप्लिन क्या होता है कि वहाँ लोग बिक ना सके, और वहाँ लोग बारगेनिंग ना जाके कर रहे हो, और वहाँ फेवरेटिज्म ना हो, तो मालिक के पास है। आज हम वेस्ट में जाते हैं, हम इतना इम्प्रेस होते हैं, हम कहते हैं हाय वहाँ कितनी इज्जत, कितना बंदे की कदर है। अगर सदर है, वजीर है, तो उसका बेटा भी उसी लाइन में लगा हुआ है जिसमें दूसरे लगे हैं। हम पसंद करते हैं ना, तो अल्लाह की बरकत को हम इतना डिसऑर्गेनाइज सोचते हैं, नौजबिल्ला जैसे हमारे मुल्कों में जिसने धक्का मारा पीछे से आगे निकल गया। कुछ लोगों ने क्यामत का दिन ऐसे ही सोचा हुआ है, धक्केशाही होगी, देखना मैं इधर से घुस घस के निकल जाऊंगा। जैसे एक दफ़ा मैंने ये वाक्य सुनाया था पहले भी कहीं, कि एक ब्रदर थे, तो वो एयरपोर्ट पे कहीं जा रहे थे, तो कहते हैं कि बहुत बड़ा मजमा था वहाँ, तो इनको समझ नहीं कि हुआ कि, अमूमन जैसे हज से लोग आए तो हाजियों को छोड़ने आते हैं ना जाने, तो कहते हैं जरा सा मैंने रश में देखा तो सबसे आगे एक बुजुर्ग थे, तो लोगों ने उनको अपने कंधों पे उठाया हुआ था और बड़े तपाक से लेके जा रहे हैं, उनको सी ऑफ करने आए थे रुखसत। और क्या कह रहे हैं, या शेख या जो भी है बुजुर्गो, जाके हमें वहां भूल ना जाना। जैसे ये ऐसे ही है ना कि कोई मुझे कहे कि आप नॉर्वे जाके मुझे भूल ना जाना। ये कहता मैं ये समझा कि ये आपको इनके आए होंगे दूसरे शहर से और आपको मेहमान है, इनको छोड़े और उन्हें कह रहे वहां जाके इनको भूल ना जाना। साथ खड़े किसी बंदे से बात हुई, तुम क्या कह रहे हो? कहता हम कह रहे हैं वहां आखिरत में जाके हमें ना भूल जाना। मंजिल यशो इंदी, आज दुनिया में हम इतनी धौंस और धांधली करते हैं सिर्फ इस जुमले को समझने ना की वजह से। तुम्हें पता नहीं मैं हूं क्या, मेरे से माथा लगाए अब दुपटो, अब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, अब मैं तुम्हें पहले अपना आप दिखाऊंगा। भड़के हैं सारी, अल्लाह का निज़ाम इतना डिसिप्लिन्ड है कि मंज़ल्लज़ी यशफ़ौ। अच्छे मुल्कों में, अच्छे इदारों में अपने साथियों को नहीं कोई सेंक्शन मिलती जहाँ दूसरों को नहीं मिल रही। तो अल्लाह ताला की इस बात को समझना है। फिर इसके बाद सूरह कहफ़ 5:26, वला युशरिक फी हुक्मिही अहदा, और वह अपने फैसले में किसी नबी या वली को शरीक नहीं करता। ज़रा से इस जुमले पे सोचें, और आप देखिए हर फ्राइडे को आप पढ़ते हैं ना, मैं भी पढ़ती हूँ अल्लाह के हुक्म से। इतना क्लियर जुमला है, कोई शरीक नहीं करता अपने फैसलों में। तो आप बताइए कि कहाँ, अब इसके बरक्स आप लफ्ज़ सिर्फ सोचिए, अभी आगे हम पढ़ेंगे सारा कुछ, अगर आप सुनते रहेंगे तो इस मौजू पर इंशाल्लाह आपका शरह सदर होगा। लेकिन मैं बग़ैर किसी तासुब के या किसी अपनी पर्सनल ग्रज के, मैं सिर्फ नाम लेती हूँ जो अमूमन लोग लेते हैं। दाता साहब कितना मारूफ है आज, दाता की नगरी, दाता का लंगर, बस समझे। दाता के देने वाला, जैसे ये कहते देती हूँ, आप कहते पानी दे, मैं कहती हूँ देती हूँ, तो ये देती से ही दाता है। कितने लंगर दाता साहब, और वहां जाने वाले क्या सोचते हैं कि दाता साहब का लंगर है, उनकी करामत है हो रही। कराची में एक बुजुर्ग है, बिल्कुल कब्र उनकी समंदर के पास है, अब्दुल्ला शाह गाजी कहते हैं उनको। आज भी कराची के अक्सर लोगों का यही गुमान है कि समंदर का पानी न बाबा जी ने रोका हुआ है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर
मीठा है वहां का पानी,
जी, मीठा कहते होंगे। तो याद है कि वला युशरिक फी हुक्मी अहदा, है ही कोई नहीं उसके हुक्म में शरीक। फिर उसके बाद सूरत रात आयत नंबर 41, वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किबा लिहुक्मिही, और अल्लाह अकेला ही फैसला करता है और इसके फैसले पर कोई नजरे सानी करने वाला नहीं। दुनिया में फैसले पहले एक अदालत में होते हैं फिर दूसरी में जाते हैं, किसी एक लॉ को अप्रूव करते हैं फिर दूसरी जगह से जाके अप्रूवल करते हैं। कितनी अप्रूवल्स के बाद हमें एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है। अल्लाह कहते हैं उसके किसी फैसले पे सेकंड थॉट देने वाला कोई नहीं। तुम क्या दूसरों को लेकर बैठे हुए हो? सूरह रात 41 आयत है। तो इससे दिल में एक हलचल हो रही है, मुझे तो ऐसे लगता है कि फिर इधर शिर्क ही निकल रहा है, हमारा अल्लाह ताला के साथ वो ताल्लुक नहीं जो होना चाहिए। फिर आप देखिए पांचवी चीज, ईसाइयों ने अल्लाह ताला के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनकी वालदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को भी अपना माबूद बना लिया था, जिस पर अल्लाह ताला ने शदीद गैज़ो गज़ब का इजहार करते हुए फरमाया, सूरत माईदा की आयत नंबर 17 देखिएगा, कुल फमै यमलिकु मिनल्लाहि शैयन इन अरादा युहलिकल मसीह इब्न मरियम व उम्मुहु व मन फिल अर्दि जमीया। ए नबी इनसे कहो, अगर अल्लाह ताला मसीह इब्ने मरियम और इनकी माँ को और सारी ज़मीन में बसने वालों को हलाक करना चाहे तो किसकी मजाल है कि इसे इसके इरादे से रोक सके? है? बिल्कुल भी नहीं है। आयत का अंदाज़े बयान खुद बता रहा है कि खिताब फरमाने वाला किस कदर बाख्तियार है और मुखातिब किस कदर बेख्तियार है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनकी वालदा के साथ मन फिल अर्दी कहकर ये वाज़े फरमा दिया कि अगर अल्लाह ताला तमाम अम्बिया सुलहा और शुहदा समेत सारी मखलूक को हलाक करना चाहे तो इसे कोई रोकने वाला और पूछने वाला नहीं। तो सारी बात समराइज करते हैं, क्या अल्लाह ताला तमाम इख्तियारात का मुतलिक मालिक है, किसी को माफ़ करे या ना करे, यानी एक को कर दे एक को ना करे कोई नहीं पूछ सकता, दूसरी किसी को इज़्ने शिफा दे या ना दे, तीसरी बात किसी की सिफारिश कबूल करने या ना करने का तमाम तर इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। कोई बड़ी से बड़ी महबूब हस्ती अल्लाह अज़्ज़वजल की पुरजलाल अदालत में अपनी मर्जी से सिफारिश करने की जिसारत नहीं कर सकेगी, ना ही कोई वली अल्लाह ज़बरदस्ती अपनी सिफारिश मनवा सकेगा, ना ही किसी बरगजीदा हस्ती को अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसा अंदाज़े कलाम इख्तियार करने की मिजाल होगी कि मैं तो अपने फ़लाँ उम्मती या मुरीद को ज़रूर जन्नत में ले जाऊँगा, या मेरा फ़लाँ प्यारा और चहीता जन्नत में ना गया तो मैं भी नहीं जाऊँगा, या मैं अपने फ़लाँ दामन गिरफ्ता गिरफ्ता कहते पकड़े हुए, यानी वो जिसने मेरा दामन पकड़ा होगा इसका परवाना है बख्शिश, यानी इजाज़त नामा लेकर ही रहूँगा, वगैरह वगैरह। तो ये दूसरा पॉइंट समझ आया, मुतलिक बादशाही और सब कुछ अल्लाह के हाथ में। आपको इतना पता है कि शिफात का गहरा ताल्लुक हमारे कलमे के दूसरे हिस्से से, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरी तरफ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और आगे आप देखेंगे जितना नफ्स सल्लम की ज़ात के मामले में हम मिस अंडरस्टूड हैं, इतना शायद अल्लाह के बारे में भी नहीं है। और सिफारिश का अकीदा बिगड़ते ही इससे कि जब हम अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को सही नहीं समझते। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं आपके जहनों में इतनी बात के अंदर से? अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत अहम है टॉपिक के एतबार से, इज़्ने शिफात का मकसद क्या है, यानी सिफारिश की इजाज़त का मकसद क्या है। देखिए कि अल्लाह ताला कहता था कि मन ज़ल्लज़ी यशफ़ौ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, तो ये इज़्न क्या है इसको समझेंगे। आप पहले इसको अपनी ज़ुबान से समझिए ताकि शायद बात क्लियर हो। जैसे आपका बच्चा आपसे पूछता है कि मामा मैं रात को खाने पे चला जाऊँ अपने दोस्तों के साथ, मिसाल है बच्चा, वैसे आजकल तो पूछते नहीं, बता ही दें तो बड़े मुअद्दब बच्चे हैं, और ये भी बता दें किधर गए हैं तो हम कहेंगे मेरे बच्चे जैसा है ही कोई नहीं है। लेकिन मिसाल है, अब कोई आपसे इजाज़त मांग रहा है और आप नहीं देती, नहीं जाना, तो वो आगे से सवाल जवाब शुरू हो जाए, क्यों, यू डोंट ट्रस्ट मी, क्या होगा, मैं छोटा तो नहीं हूँ। जब वो आपसे आपकी इजाज़त के देने या ना देने पे जिरा करेगा ना, तो आपको बुरा लगेगा, बिकॉज आई एम योर मॉम, मैं तुमसे कम अज़ कम 18 साल बड़ी हूँ। आप अपने बच्चे को यही कहेंगे ना। बस यहाँ ये समझें, जब अल्लाह कहता है कि मैं इजाज़त नहीं दे रहा, तो आप देखिए बच्चे और माँ में तो कोई नस्बत है, चलो 18 से 20 साल का फ़र्क होगा, अल्लाह की हस्ती और एक बुज़ुर्ग में कोई आपस में नस्बत जुड़ती है? नहीं जुड़ती। यदि किसी के छोटे से, फिर दूसरी बात भी समझिए कि ब्रेन आपके भी पास है, आपके बच्चे के पास भी है, वो अपने ब्रेन से सोच रहा है कि अगर आज रात मैं दोस्तों के साथ गुजार लूँ बाहर तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसका ब्रेन इतनी सी बात सोच रहा है। आपका ब्रेन बड़ा है, आप कहते नहीं गलत काम हो सकते हैं, बाहर चले जाएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, पुलिस आ जाएगी, मस्ती में ना जाए। अब वो जो अंदेशे हैं आपके दिल में कि आपका बच्चा उनको पा भी सकता है, नहीं पा सकता। तो इसी तरह समझिए, अल्लाह किसी को इजाज़त दे या ना दे, इसकी हिकमत आप और मैं नहीं समझ सकते। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। हम ये देख चुके हैं कि तमाम इख्तियारात का सिर्फ अल्लाह ताला ही मालिक है, किसी को माफ़ करने या ना करने का इख्तियार भी इसी के पास है, शिफात कबूल करने या ना करने का इख्तियार भी इसी के पास है, किसी को जन्नत या जहन्नम में भेजने का इख्तियार भी इसी के पास है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि शिफात का मकसद क्या है। शिफात दर हकीकत क़यामत के रोज़, इसको हाईलाइट करें, सबसे खूबसूरत जुमले हैं ये जो अभी हम पढ़ने वाले, और मैंने अक्सर तफसीर की क्लास में इस तरह के कोड वर्ड्स लिखाए हुए हैं, उन्हीं में से एक ये भी है। क्या? शिफात दर हकीकत क़यामत के रोज़ अम्बिया सुलहा यानी सालहीन नेक लोग और औलिया मुराद अल्लाह के दोस्त वली, उनके लिए एक एजाज़ होगा जिन्हें अल्लाह करीम की तरफ से अता किया जाएगा, जिन गुनाहगारों को अल्लाह करीम माफ़ फरमाने का फ़ैसला कर चुके होंगे, इन्हें अस खुद जन्नत में ले जाने की बजाय अपने महबूब और मुकर्रब बंदों को ये एजाज़ अता फरमाएंगे कि वो इनके लिए सिफारिश करें और इन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाएं। इतनी बात क्लियर हुई है? एक मिसाल देती हूँ। आपका स्कूल है, सारा साल स्टूडेंट्स आपके स्कूल में आते रहे, ग्रेड्स लेते रहे, अब उनका फाइनल है, 15 दिन के बाद उनकी ग्रेजुएशन है, और उसमें पास फेल फर्स्ट सेकंड स्टूडेंट्स को आपने अलग करना है। आम बात है ना, हम हर साल देखते हैं अपने स्कूलों कॉलेजों में। अब स्कूल वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड को सॉर्ट आउट कर चुके हैं, उन्होंने उसके पेपर्स चेक किए, प्रैक्टिकल देखे, उनके मुताबिक मिसाल अहमद जो है वो फर्स्ट है और मोहम्मद सेकंड है और उज़ैर थर्ड है। अब वो कहते हैं इनको कुछ गिफ्ट देना चाहिए। वो मोहम्मद के लिए समझें कि जी $500, दूसरे के लिए 300, चौथे के लिए $100 का गिफ्ट भी रख लेते हैं पैक करके। अब अगला सवाल क्या आता है, ये है असल में इस मौजू में, अब खुद क्या दें। खुद तो स्कूल में रोज़ ही टीचर प्रिंसिपल होते हैं, किसी को बुला लेते हैं मेहमान खसूसी, गेस्ट ऑफ ऑनर। आप शहर की किसी मशहूर हस्ती को जिसको आपको लगता है कि बुलाना चाहिए बुला लेते हैं, फिर एंड पे क्या कहते हैं कि आइए या शेख या फला अपने हाथ से बच्चों को गिफ्ट दीजिए। ये भी बात क्लियर है ना, किसी सदर को बुला लें, वज़ीर को बुला लें, मशीर को। अब क्या होगा, ये लीजिए ये रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक ये अहमद का ये फलां का। अब वो जो गिफ्ट आप पकड़ाते हैं और जिसका नाम लेते हैं वो उसको शिकन करते हैं, गिफ्ट दे के फारिग कर देते हैं। क्या उस वक्त, अब ये जुमला नोट कर लें, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, क्या उस वक्त चाहे वो गेस्ट ऑफ ऑनर ही हैं, ज़ाहिर इज्जत दी है ना, उनके पास ये चॉइस है कि अहमद की जगह मोहम्मद और मोहम्मद की जगह अहमद को दे दे, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट कर दे। बस ये है सिफारिश। सिफारिश इज़ जस्ट एन ऑनर, जस्ट एन ऑनर। फैसला पीछे आपके इदारे का होता है, 100 लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं, वो गेस्ट ऑफ ऑनर आके आपसे नहीं पूछेंगे वो उसको क्यों नहीं दिया, फर्स्ट उसको क्यों नहीं किया। आप कहेंगे चुप चुप, हमें पता है ये तो पास भी हो गया तो बड़ी बात है, मैं तो इसकी भी उम्मीद नहीं रही थी। हर जो मैनेजर होता है या डायरेक्टर होता है उसको अपने साथियों की कारकर्दगी पता होती है। अल्लाह सुबहाना तआला के लिए मिसाल तो कोई नहीं, उसको अपने एक एक बंदे के अंदर की भी बात पता है, क्वालिफिकेशन भी पता है। अब होगा क्या, मसलन हम सबसे पहले हज़रत नूह को समझते हैं, आगे हदीस आ रही है आप सुनेंगे, बहुत प्यारी हदीस है। देखिए हज़रत नूह ने 950 साल अल्लाह के दीन की खिदमत की और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कोई प्रोटोकॉल ही नहीं मिला। पत्थर, आप सूरत कमर पढ़ लीजिए, सूरत नूह पढ़ें, सूरत हूद पढ़ें, अल्लाह ताला कहते हैं वो नूह जो डांटा गया, जिसको झिड़कियाँ दी गई, जिधर जाके अल्लाह की बात बयान करते थे लोग उनसे मुँह फेर कर दूसरी तरफ चले जाते थे। हज़रत नूह को दुनिया में उनका हसबे मरतबा प्रोटोकॉल नहीं मिला, ऐसे ना, द प्रॉफिट्स दे डिज़र्व मोर देन दे गॉट इन दी वॉट। रिस्पॉन्स ही कोई नहीं मिलता था, कहीं तो पत्थर पड़ते थे। तो आज हमारे दौर में हम जैसे कम इल्म और कम अमल लोगों के लिए भी इतनी इज्जत और इतना प्रोटोकॉल हो, वो भी चलें एक महदूद पैमाने पर हम कर लें, अदरवाइज़ कोई किसी को दीन देने की कदर कर सकता आज तक? कभी देखिए आपने दुनिया में अपने दीन सिखाने वाले उस्ताद को उसका हक दिया, कोई दे सकता है? कोई दुनिया में ऐसी करेंसी जिसके अंदर आप किसी को हिदायत का रास्ता दिखाने पे कुछ दे सकें, इज इट ना, ये पॉसिबल ही नहीं। अब हजरत नूह सारी ज़िंदगी तो रहे, मिला कुछ नहीं, अल्लाह क़यामत के दिन हजरत नूह को कंपनसेट करेगा दुनिया की इन तकलीफ़ों का, आखिरत के इस ऑनर का। चले आपने दुनिया में बड़े धक्के खाए, आइए नूह आज आप सामने तख्त पे बैठे हैं और लोग देखेंगे कि आपकी यहाँ कितनी शान है, और आइए आप मेरे बंदों को गिफ्ट दें। बात समझे, ये उनको इज्जत मिल रही है लेकिन उनके हाथ में इख्तियार कोई नहीं है, इस बात को सामने रखने की ज़रूरत है। और याद रखिए जब ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है फिर आप दूसरों के लिए ज़्यादा न्याजमंदियाँ नहीं करते। मसलन अब इसी मिसाल को आगे कंटिन्यू करें ना, एक बच्चा फेल होता है, उस बच्चे को पता लग जाता है कि हमारी ग्रेजुएशन में गवर्नर साहब आ रहे हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे, वो एक रात पहले गवर्नर साहब के पास जाए और बातचीत में उनको बताए मैं आपके दोस्त का बेटा हूँ, ये ज़रा आप एक फ़ोन तो कर दें मेरे स्कूल वालों को कि कल अहमद वाला गिफ्ट मुझे दे दें और जो मेरी लोकल पोजीशन थी उस पर उसको कर दें। गवर्नर साहब को ये सजदा है कि वो इसकी ये फरमाइश पूरी करेंगे, तो क्या अल्लाह को ये सजदा? बस इतनी सी बात है, इसको समझ जाएंगे तो फिर गलत नहीं होगा। अगला जुमला बड़ा खूबसूरत है, قیامت کے روز حساب کتاب شروع کرنے کا وقت تو اللہ تعالیٰ نے خود طے کر رکھا ہے، جسے آگے پیچھے کرنا کسی کے اختیار میں نہیں۔ تاہم طے شدہ وقت پر حساب کتاب شروع کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا موقع عطا فرمایا جائے گا، جس کا مقصد زمین و آسمان کی ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ برگزیدہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا سب سے بڑا اعلیٰ اعزاز مقام محمود عطا فرمانا ہوگا۔ چنانچہ آپ کی شفاعت کبریٰ کے نتیجے میں ہی حساب کتاب کا آغاز ہوگا۔ اس کو آگے جا کے انشاءاللہ ایکسپلین کروں گی کہ شفاعت جو ہے وہ دو مختلف قسم کی ہے، ان میں سے پہلی شفاعت جنت یا جہنم کے بارے میں نہیں ہے۔ بڑی ڈرنے والی بات ہے ویسے، یہ نہیں لوگ قیامت کے دن آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے کیا ہمیں جنت میں بھیج دیں، یہ تو ابھی بہت دور ہے۔ اس بات کی سفارش کریں گے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ حساب شروع کر دیں۔ لائن میں لوگ کھڑے ہیں، ونڈو ہی نہیں کھل رہے۔ عرب لوگ کیا کہتے ہیں، الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے، اور یہ ہمارے نبی کے ذریعے سے حساب شروع ہوا۔ اگر لوگ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، پسینوں میں شرابور ہیں، سر کھول رہے ہیں، کندھوں پہ اونٹ گھوڑے پتہ نہیں کیا کچھ لادا ہوا ہے، اپنے بوجھ ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے جاؤ بھاگ جاؤ، میں نے نہیں آج رزلٹ دینا ابھی تمہیں۔ اور لوگ اتنے بیزار ہو جائیں گے قیامت کے دن کہ کہیں گے کہ جو بھی فیصلہ اللہ نے کرنا بات ختم کرے، ایک دفعہ شروع کر دیں۔ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، جب بہت لمبی ہو جاتی ہے نا کہانی، پرولونگڈ ڈسپیوٹ، تو کیا کہتے ہیں، چلیں بھائی بات ختم کرائیں، بہت لڑ لیا، بہت جھگڑ گئے۔ قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ اللہ سے کہیں گے، اور پھر حساب شروع ہوگا۔ ایسی ہی صورتحال دیگر شفاعتوں کی ہوگی۔ انبیاء، اولیاء اور صلحاء کو ان کے اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق شفاعت کے مواقع عطا فرما کر لوگوں کے سامنے ان کی عزت افزائی کی جائے گی، اور اس بات کی قدر کی جائے گی کہ دنیا میں انہوں نے اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی بسر کی۔ پس اب یہ آخری جملے سنیے گا غور سے، پس اذن شفاعت کا اصل مقصد، یعنی سفارش کی اجازت دینے کا اصل مقصد اللہ کے فیصلوں کو بدلنا نہیں، بلکہ انبیاء اولیاء کو اعزاز عطا فرمانا ہے۔ مثال سمجھ آ گئی ہے؟ الحمدللہ۔ جن جن اولیاء اور صلحاء کی اللہ تعالیٰ عزت افزائی فرمانا چاہیں گے، انہیں شفاعت کی اجازت عطا فرمائیں گے، اور شفاعت کرنے والے اپنی مرضی کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کی مرضی کے عین مطابق صرف اسی گنہگار کے لیے سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت فرمائیں گے۔ گویا یہ خالص اللہ تعالیٰ کا انعام اور اعزاز ہوگا، جس سے وہ قیامت کے روز اپنے مقرب اور محبوب بندوں کو نوازے گا۔ تو کلیئر ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے کہ سفارش سفارش ہے، حکم نہیں ہے۔ سفارش ایک عزت ہے، اعزاز ہے، جو اللہ نیک لوگوں کو دے گا۔ کیوں دے گا؟ کیونکہ دنیا میں ان کی خاطر خواہ عزت نہیں ہوئی۔ آج دیکھ لیجئے، ایک دیندار، ایک سمجھدار انسان، اور اس کے مقابلے میں ایک دنیا کا خوب بڑھاتا ہوا، ہوشیاری دکھاتا ہوا مرد، دو لوگ تقابل میں آ جائیں، لوگ عموماً کس کو عزت دیتے ہیں؟ یہ مولوی صاحب ہیں، ان کو کیا کہنا ہے، یہ بدو، یہ سیدھے سے، یہ شلوار اونچی ٹخنوں سے پہننے والے، اور وہ ہیلو سر، ہاؤ آر یو ڈوئنگ، مسٹر، مسز، ٹون ہی بدلتی ہے۔ تو نیک لوگوں کو اس دنیا میں عزت نہیں ملی پوری، جتنی بھی دے دیں گے تھوڑی ہے، وہ اللہ قیامت کے دن سفارش کی صورت میں دے گا۔